टीवी की न्यूज़ सुनकर राघवेंद्र प्रताप गुस्सा हो चुके थे। इसके दो कारण थे, पहला न्यूज़ रिपोर्टर का उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी करना, तो दूसरा उम्मीदवार के तौर पर उनके साथ साथ यशवर्धन सिंह का भी नाम आना। काय साला, राघव कुठे गेला? मीताला नाश्ता आणून दिला? क्या हुआ, राघव कहाँ गया? मैं उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी। एक औरत हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आई। वो राघवेंद्र प्रताप सिंह की माँ सुमित्रा देवी थी, जिसने महाराष्ट्रियन स्टाइल में साड़ी पहनकर बालों में गजरा लगा रखा था, नाक में महाराष्ट्रियन नथ पहन रखी थी और खूब सारे सोने के गहने भी। उसके रहन सहन और पहनावे से उनकी धन दौलत और वैभव साफ नजर आ रहा था। गाइस, घड़ला नहीं आई, आप दादा की ज्यादा फिक्र मत किया करो, हमारे होते हुए उन्हें कोई टेंशन नहीं हो सकती, वहां मौजूद आदमी ने कहा। अरे ऐसे कैसे ना करो, तुम भी कमाल करते हो शुभम, जानता है ना राघव कितना गुस्से वाला है, अभी उसकी ठनकी ना तो एक दो को ठोक डालेगा, सुमित्रा ने तेज आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर अंदर से एक और औरत बाहर आई। उसने भी सुमित्रा की तरह साड़ी पहन रखी थी, लेकिन वो देखने में जवान थी। उस औरत को बाहर आता देख शुभम बोला, आई थोड़ा धीरे बोलो ना, ये देखो वहिनी भी बाहर आ गई। उसे देखकर सुमित्रा ने अपना नाक सिकोड़ा और वहां से चली गई। मैं आता हूँ वहिनी, शुभम वहां से जाने को हुआ लेकिन उसने उसे रोकते हुए बोला, सब ठीक तो है ना दादा? हाँ हाँ, इसे सब खबर दे दो, अगर सब ठीक नहीं भी होगा तो ये ठीक कर देगी। अरे तेरा जो काम है वो आकर कर ना आरती, अंदर से सुमित्रा के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो किचन में जोर जोर से बर्तन बजा रही थी, मानो काम कर रही हो। मैं देख लूंगा वहिनी, शुभम ने कहा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आरती भी अंदर चली गई। उसके अंदर आते ही सुमित्रा की खिटपिट फिर से चालू हो गई। वो उस पर झल्लाते हुए बोली, तुझे राघव की कब से फिक्र होने लगी, तुम्हें तो वो पसंद ही नहीं था। आई अब घर के सदस्य की फिक्र नहीं होगी तो? आरती की बात खत्म होने से पहले ही सुमित्रा ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और मुंह बनाकर बोली, घर का सदस्य? अरे वो कब से हो गया, मुझे आज भी याद है वो दिन जब तेरे घर वाले तेरी बहन के रिश्ते के लिए मना कर दिया था और साथ ही ये बोलकर गए थे कि मेरा राघव गुंडा है। आरती ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और नीचे सर झुकाकर खड़ी हो गई। हाँ अब ये मुंडी झुकाने से कुछ नहीं होगा, तेरे घर वाले एहसान फरामोश है, मेरा राघव गुंडा है तो उनका दामाद शिवेंद्र, वो भी तो उसी के साथ काम करता है। आई शिव सिर्फ उनके अकाउंटेंट है, वो उनकी तरह किसी की जान नहीं लेते, बात बस से बाहर हो गई तो आरती ने जवाब दिया, और मेरे घर वालों ने राघव के लिए नहीं मानव के लिए हाथ मांगा था। अच्छा तो मैं अपने मानव का हाथ तेरी बहन के हाथ में दे दूं, मेरा मानव विदेश में पढ़ाई कर रहा है, वो अपनी मर्जी से जिस पर लड़की के ऊपर हाथ रखेगा उसी को इस घर की दुल्हन बनाऊंगी, आई बड़ी मानव से शादी करवाने, सुमित्रा ने मुंह बनाकर बोला और वहां से चली गई। राघवेंद्र प्रताप सिंह के परिवार में उसकी माँ सुमित्रा देवी और तीन भाई थे। जहां बड़े भाई शिवेंद्र की शादी हो चुकी थी तो छोटा भाई मानव बाहर स्टडी कर रहा था। राघवेंद्र के दादा परदादा जमींदार थे और पुरखों के समय से ही काफी धन संपदा इकट्ठा कर रखी थी। राघवेंद्र के पिता की मौत हो चुकी थी, उनके क्षेत्र में उनका हमेशा से ही बोलबाला रहा था। फिर राघवेंद्र के पॉलिटिक्स में जाने के बाद उनका दबदबा और भी बढ़ गया। वो खबर सुनने के बाद राघवेंद्र अपनी जीप लेकर बाहर निकला था। उसने ऊपर से छत खोल रखी थी तो जो भी रास्ते में उसे मिलता वो उसे प्रणाम करता। मन तो कर रहा है उस त्यागी को जाकर अभी उड़ाए, साला दो कौड़ी की इज्जत नहीं थी उसकी जब उसने वो पार्टी बनाई थी, हम थे जिसने उस पार्टी को पहचान दिलाई, हमारे पैसे खर्च किए, हमें हमेशा रोकता रहा कि बारी आएगी तब मुख्यमंत्री बना दूंगा, लेकिन अब बारी आ गई है तो उसने हर्षवर्धन के बेटे को खड़ा कर दिया, यहाँ क्या लंगर लगा हुआ है, जो बारी आने के बाद ही खाना मिलेगा, हम भी देखते हैं हमारे होते हुए वो मुख्यमंत्री कैसे बनता है, एक एक को ठोक देंगे, राघवेंद्र प्रताप सिंह ने गुस्से में कहा। वो कार को फुल स्पीड में रोड पर दौड़ाए जा रहा था, उसे रोकने के लिए पीछे से उसके आदमी आ रहे थे, कोई उसी की तरह जीप में था तो कोई मोटरसाइकिल पर उसका पीछा कर रहा था। लल्लन ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाते हुए राघवेंद्र की गाड़ी को ओवरटेक कर लिया और अपनी बाइक को उसके जीप के आगे खड़ा कर दिया। उसके अचानक सामने आने की वजह से राघवेंद्र ने ब्रेक मारे और वो वहीं रुक गई। का पगला गए हो क्या लल्लनवा, राघवेंद्र उसी के अंदाज में चिल्लाया। का भैया जी, अब हमारी बिहारी में कानों में मिश्री घोलोगे तो हम तो आपकी डाइट सुनकर भी नहीं सुनने वाले, इतना गुस्सा काहे को, अरे एक बार हमको कहकर तो देखते, अरे भूचाल ला देते, लल्लन ने समझाते हुए कहा। तब तक बाकी के लोग भी राघवेंद्र तक पहुंच चुके थे, वो गाड़ी से बाहर निकले और राघवेंद्र के पास आ गए। दादा आपको कितनी बार कहा है कि आप बस हुक्म किया कीजिए, उसके बाद त्यागी का चीज है, पूरी मुंबई को सर पर उठा लेंगे, उनमें से एक बोला। उसी के सुर में सुर मिलाता हुआ दूसरा बोला, दादा आपने तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, आई आपके लिए आपका फेवरेट पोहा बनाकर लाई थी, यहाँ आप कुछ नहीं खाए तो हम सब लोग भी भूखे बैठे हैं। हमारे पेट में से तो भूख के मारे गुड़गुड़ की आवाज भी आ रही है, लल्लन ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा। अरे बस कर नौटंकी, एक तुम लोग ही हो जिसकी वजह से आज हमारी इतनी ताकत है, त्यागी को हम देख लेंगे, सबसे पहले उस रिपोर्टर को उठाओ जो हमारे खिलाफ खुलेआम बोल रहा था। जैसे ही राघवेंद्र ने अपनी बात खत्म की उनमें से एक गुंडा बोला, दादा उस खबर को आए हुए पूरे 2 घंटे हो चुके और आपको क्या लगता है कि अब तक वो आजाद घूम रहा होगा? अरे उसको तो खुद उसके ऑफिस से जाकर धर दबोचा है। शाबाश मेरे शेरो, राघवेंद्र ने गर्व भरी मुस्कुराहट से कहा, वैसे रखे कहाँ हो उसको? अरे अपने भैंसन के तबेले में रखे हैं भैया जी, लल्लन ने बताया, उन खिलौने से तो हम रात को खेलेंगे, तब तक खातिरदारी अच्छे से हो जानी चाहिए उसकी। चलो अब घर चलते हैं, बहुत भूख लगी है। सुन मुकेश, घर पर कॉल करके आई को बोल दे कि आरती भाभी से कहे मेरा फेवरेट कांदा पोहा बना दे, राघवेंद्र ने कहा और अपनी जीप में जाकर बैठ गया। इस बार उसके साथ लल्लन भी था, वो उसका खास आदमी था और साथ ही कम उम्र का होने की वजह से उसे उसके साथ छोटे भाई की तरह लगाव था। दूसरी तरफ वो न्यूज देखने के बाद वैदेही देव और प्रतीक के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। यशवर्धन को भी अब तक इन सब का पता चल चुका होगा, वैदेही ने प्रतीक की तरफ देखकर कहा। हाँ उसे ये सब कैसे छिपा हो सकता है, उनसे बात करके देखें, प्रतीक ने पूछा। वैदेही ने हां में सिल हिला दिया और उसी वक्त यशवर्धन को कॉल किया। यशवर्धन अपने घर पर अनंत देसाई के साथ था, ये न्यूज देखने के बाद वो भी काफी परेशान था। हमें त्यागी जी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो बिना किसी मीटिंग किए ये बात पब्लिक कर देंगे, अनंत देसाई ने कहा। मीटिंग तो दूर की बात है, उन्होंने एक बार हमसे ये बात साझा तक करना जरूरी नहीं समझा। एक हफ्ते बाद जब पार्टी की जीत होगी उसके बाद पता नहीं हमें कौन कौन सपोर्ट करेगा, हमें तो किसी पर विश्वास नहीं है, यशवर्धन परेशान स्वर में अनंत देसाई से बात कर रहा था। तभी उसके फोन पर वैदेही का कॉल आया। यशवर्धन ने अनंत देसाई को चुप रहने का इशारा किया और वैदेही का फोन उठाया। जी वैदेही जी बोलिए, हमें पता है कि आपने हमें क्या बताने के लिए फोन किया होगा, यशवर्धन ने फोन उठाते ही कहा। तो क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे? नहीं, हमें इस बारे में कोई खबर नहीं थी। इस खबर को देखने के बाद जितना शौक आपको लग रहा है उतने ही सदमे में हम भी हैं, ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है।
आपको क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वैदेही ने पूछा। हम इस वक्त कॉल पर बात नहीं कर सकते, इस तरह की बातें तो बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी देसाई जी भी हैं जिन्हें इस बारे में सब कुछ पता है, तो क्यों ना शाम को एक मीटिंग करें, यशवर्धन ने पूछा। वैदेही का फोन भी स्पीकर पर था, उसने जवाब के लिए प्रतीक की तरफ देखा। प्रतीक के हामी भरते ही वैदेही ने कहा, ठीक है फिर आज रात की मीटिंग तय रही, लेकिन मेरे साथ मीटिंग में मेरा असिस्टेंट देव और प्रतीक सर भी मौजूद रहेंगे, हमें मंजूर है, हम आपको मीटिंग का टाइम बता देंगे, यशवर्धन ने कहा और कॉल कट कर दिया। उधर वैदेही भी अपने कामों में लग चुकी थी, अब उनके पास सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा था जिसमें उन्हें राघवेंद्र प्रताप सिंह के गुनाहों के सबूत इकट्ठे करने थे। वक्त का बीतता हर पल उनके लिए बहुत कीमती था और वो उसे जाया नहीं करना चाहती थी। राघवेंद्र अपने आदमियों के साथ घर आ चुका था, घर आते ही उसने नाश्ता किया। नाश्ता करने के तुरंत बाद वो सीधा अपनी हवेली के पीछे बने भैंसों के तबेले में गया, वहां भैंसों की आवाज आ रही थी। क्या बे यही जगह मिली थी क्या इसको बांधने के लिए? जैसे ही गोबर की बू राघवेंद्र के नाक में गई वो नाक सिकोड़ कर बोला, दादा कौन सा आपको यहाँ रहना है, ये खास इंतजाम तो हमने इसके लिए करवाया है, एक आदमी ने हंसते हुए कहा। राघवेंद्र भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, वो थोड़ा आगे पहुंचा। 2 भैंसों के बीच में रिपोर्टर को बांधा गया था, उसकी हालत खराब थी, वो पसीने से लथपथ था और उसके हाथ पैर बांधे हुए थे, वो शोर न मचाए इसलिए उसके मुंह पर टेप भी चिपकाया हुआ था। वहां काफी सारी भैंसें मौजूद थीं, उनमें से एक भैंस ने उसे जोर से लात मारकर थोड़ा दूर फेंक दिया, इसी के साथ वो सब कहकहा लगाकर हंस पड़े। कैसे ललनवा, बहुत अच्छे से इंतजाम किए हो, रिपोर्टर बाबू पूरा एंजॉय कर रहे हैं, बोलते हुए राघवेंद्र ने अपनी आवाज तेज की और कहा। क्या रिपोर्टर बाबू, कहीं कोई कमी रह गई हो तो बता दीजिएगा। इसका ठीक है दादा, आपके आदमियों का काम तो ये भैंसे ही कर रही हैं, लल्लन ने हंसते हुए कहा। तो कई भैंसिया को काम पर रख ले, राघवेंद्र ने कहा और रिपोर्टर के पास आकर उसके बाल खींचते हुए बोला। टीवी में तो बड़ा जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि हमारे खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, अरे जब इतना सब कुछ पता ही था तो काहे हमारे खिलाफ चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, पता नहीं था क्या कि हमारे खिलाफ बोलने वाले का क्या हाल होता है, रिपोर्टर ने बोलने की कोशिश की लेकिन मुंह बंद होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और उसके मुंह से आ ऊ की ही आवाज निकल पा रही थी। राघवेंद्र वहां से बाहर आया और अपने आदमियों से बोला, थोड़ी देर बाद रिपोर्टर बाबू को अच्छे से तैयार करके लाना, हम इनके साथ लाइव न्यूज टेलीकास्ट करेंगे, और हाँ पार्टी की तैयारी करना। जी दादा, उनमें से किसी ने जवाब दिया। राघवेंद्र वहां से जा चुका था, रिपोर्टर की निगरानी में कुछ आदमी वहीं मौजूद थे। रिपोर्टर बोलने की अभी भी कोशिश कर रहा था, लेकिन भैंसों की आवाज में उसकी आवाज दबकर रह गई थी।